पृष्ठ संख्या 348 पक्षी। भारतीय एवं फारसी कथा साहित्य में पक्षी अत्यधिक महत्वपूर्ण पात्र है। पक्षियों में भारतवर्ष में जैसे गरुड़ दो को एक विशेष स्थान प्राप्त है, उस प्रकार ईरान में सीमुर्ग तीन को, अरब में अनका को और तुर्की में करकस को प्राप्त है। सीमुर्ग फारसी साहित्य के प्रथम संपूर्ण महाकाव्य फिरदौसी कृत शाहनामा में वर्णित है कि साम चार के घर जाल जन्मा। दो, यह बड़ा बहादुर पक्षी है। अपनी तेज गति तथा वीरता के कारण ही तो उसे विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त है। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, 1958 ईस्वी 150-151। तीन क, फारसी में सी का अर्थ है 30 और मुर्ग का अर्थ है पक्षी, अर्थात वह पक्षी जिसमें 30 पक्षियों की सी शक्ति हो। ख, दास्ताने अजम में उल्लिखित है कि गुर्ब चीनी वांग्मय का अन्वेषक बताता है कि इस सिमुर्ग के जोड़ का रुख नामक एक और पक्षी चीनी कथा कहानियों में आता है और वह भी बड़े काम देता है। ख्याल, दास्ताने अजम, पटना, 1935, पृष्ठ 127। चार, रुस्तम का दादा। तो वह अत्यंत गौर वर्ण था, पृष्ठ संख्या 349। उसके सिर के बाल तक रजत के सदृश श्वेत और चमकीले थे, इसलिए उसका नाम जाल अर्थात पीर अथवा बूढ़ा रखा गया। बेटे को देखकर पिता कांप उठा और एक और अशुभ समझकर उसे माता की गोद से पृथक करके पर्वत अलबुर्ज की चोटी पर छोड़ दिया ताकि वन्य जीव जंतुओं का शिकार हो जाए। पर्वत पर एक सिमुर्ग रहता था। वह उस शिशु को उठाकर अपने घोंसले में ले गया और लालन पालन करने लगा। स्वप्न में शाम ने यह सुना, वह पुत्र जो तेरी दृष्टि में अशुभ था उसका ईश्वर द्वारा पालन पोषण हुआ है। पिसर गर्भ नजदीके तू बुध खार, मर ऊ हस्त पर्वदाय किर्दगार। फिरदौसी शाहनामा, तेहरान, जिल्द एक, पृष्ठ 137। शाम अलबुर्ज पर्वत पर गया, जाल और सिमुर्ग से मिला। विदाई के समय सिमुर्ग ने जाल से कहा कि मैंने धाय की भांति तेरा लालन पालन किया है। तुरा परवरिंदा यके दाया अम, हमत दाया हम नेक सरमाया अम। वही पृष्ठ 138। तदनंतर सिमुर्ग ने उसे कुछ पर पंख दिए और कहा कि वे संकट काल में काम आएंगे और उनसे उसके वंश को पर लग जाएंगे। फारसी सूफी काव्य में तो सिमुर्ग को अत्यधिक आदर एवं मान प्राप्त हुआ है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की प्रसिद्ध मसनवी मंती कुत्तैर में कई पक्षी पात्रों के रूप में आए हैं। वे सूफी साधक हैं और सिमुर्ग तक, जो परमात्मा का प्रतीक है, पहुंचने का प्रयास एवं प्रयत्न करते हैं और नाना प्रकार के कष्टों का वर्णन करते हैं। हुदहुद पक्षी उनका पथ प्रदर्शक बनता है। अंत में केवल 30 पक्षी ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सफलीभूत होते हैं। इसके पश्चात परम ज्योति के आलोक में 30 पक्षी देखते हैं कि उन 30ों की प्रतिच्छवि सिमुर्ग का चेहरा है और सिमुर्ग के चेहरे ही की प्रतिच्छवि वे 30ों हैं। उनमें अभेद है, पृष्ठ संख्या 350। इसके बाद ही 30ों की प्रतिच्छवि उस परम ज्योति में विलीन हो जाती है और न कोई यात्री रहता है, न पथ प्रदर्शक और न ही मार्ग। इस प्रकार मैं और तू का भेद मिट जाता है। लाजरम ईजा सखुन कोताह शुद, रहबरो रहरो न मांदो राह शुद। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 280। अर्थात संक्षेप में, न पथ प्रदर्शक रहा, न मार्ग चलने वाले और न ही राह, मैं और तू का भेद मिट गया। शुक हिंदी सूफी साहित्य के काव्य सौंदर्य के वर्धन के लिए कवियों ने दीर्घ काल से प्रचलित शुक की रूढ़ी का आश्रय लिया है। रूढ़ी के अनुरूप शुक शास्त्रज्ञ, पंडित तथा उपदेशक होता है। मनुष्य की भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और विचारों का आदान प्रदान करता है। वह प्रेम संबंध संगठक और संदेश वाहक के रूप में भी व्यवहृत हुआ है। पद्मावत में ब्राह्मण द्वारा रत्नसेन के दरबार में उपस्थित किए जाने पर हीरा मनसुआ अपना परिचय एक पंडित एवं वेदज्ञ के रूप में देता है। वह कहता है, चतुर वेद हों पंडित, हीरा मन मोहिनाव, पद्मावती सो मेरवाओं, सेव करौं तेहि ठाव। जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 32। उपर्युक्त दोहे से शुक का विद्वान एवं सकल शास्त्रज्ञ होना स्पष्ट हो जाता है। अतः जायसी ने सुए की विद्वता आदि का वर्णन बड़े ही उल्लसित ढंग से किया है। वस्तुतः बनिजारा खंड की योजना का यही प्रयोजन है। इंद्रावती में भी मधुकर तोते के पांडित्य एवं विद्वता की चर्चा इस प्रकार करता है। पृष्ठ संख्या 351। तुम पंडित बुधवंत गरेवा, उतरहु आई करऊं मैं सेवा। नूर मोहम्मद इंद्रावती, पहला भाग, पृष्ठ 102। उक्त ग्रंथ में फिर सुवा भी अपनी पंडिताई एवं चतुराई का बखान करता है। हाँ पंडित और चातुर, कहाँ चलो तेहि संग, जीव पंखी नहीं पाले, पाले अंग बिहंग। वही पृष्ठ 103। पद्मावत में सुख संदेशवाहक, प्रेम संबंध घटक और परिणय ग्रंथि बंधक के रूप में भी आया है। सुवा खंड, बनिजारा खंड, नागमती सुवा संवाद खंड, राजा सुवा संवाद खंड, पद्मावती सुवा भेंट खंड आदि स्थलों पर हीरामन की चर्चा विशेष रूप से हुई है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुवा है, जिसे पद्मावती बहुत चाहती है। वह सकल कला पारंगत है। जब पद्मावती का कहीं विवाह नहीं होता है, तब वह दिन रात हीरामन से इसी बात की चर्चा करती है। सुआ पद्मावती से एक दिन कहता है कि यदि कहो तो देश देशांतर में घूम फिर कर मैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढूं। राजा को इस बात का पता चल जाता है। वह क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा देता है। पद्मावती विनती करके किसी प्रकार सुए के प्राण बचाती है। सुआ पद्मावती से विदा मांगता है, परंतु पद्मावती प्रेम के मारे सुए को रोक लेती है। सुआ उस समय तो रुक जाता है, परंतु उसके मन में बराबर खटका बना रहता है। एक दिन वह वन की ओर उड़ जाता है। वन के पक्षी उसका बड़ा सत्कार करते हैं। 10 दिन के अनंतर एक बहेलिया उसे पकड़ लेता है। बहेलिया सुआ को सिंघल द्वीप में आए हुए चित्तौड़ के एक ब्राह्मण व्यापारी के हाथ बेच देता है। ब्राह्मण से चित्तौड़ का राजा रत्नसेन क्रय कर लेता है। शास्त्रविद प्रगल्भ शुक राजा रत्नसेन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। नखशिख वर्णन करके वह राजा के हृदय में पद्मावती के प्रति आकर्षण एवं प्रेम उत्पन्न करता है। रत्नसेन योगी बनकर सिंघल द्वीप की ओर अग्रसर होता है। पृष्ठ संख्या 352। और शुक गुरु रूप में मार्गदर्शक बनता है। सिंघल द्वीप पहुंचकर राजा अपने सब साथियों के साथ महादेव के मंदिर में रुकता है और हीरामन पद्मावती से भेंट करने जाता है। जाते समय वह रत्नसेन से कहता है कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजन करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। हीरामन पद्मावती के पास जाकर रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा करके कहता है कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में योगी होकर यहाँ तक पहुँचा है। पद्मावती उसकी प्रेम व्यथा को सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा करती है और कहती है कि वह वसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने उसे देखने जाएगी। सुआ यह सब समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आता है। इस प्रकार हीरामन प्रेम संबंध घटक और संदेशवाहक के रूप में काम करता है और रत्नसेन एवं पद्मावती का मिलन कराने में फलीभूत होता है। वह मनुष्यों की बोली बोलता है और मनुष्यों की भाषा में विचारों का आदान प्रदान करता है। उस्मान की चित्रावली में इस कथानक रूढ़ी का व्यवहार जिस प्रकार हुआ है, इस संबंध में डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने मध्ययुगीन प्रेमाख्यान में लिखा है, प्रेम घटक के रूप में कुछ कवियों ने पक्षियों का उपयोग किया है। उस्मान की चित्रावली में भी परेवा सुजान का सहायक है। यह चित्रावली का सौंदर्य वर्णन कर सुजान के हृदय में उत्कट प्रेम उत्पन्न करता है। सुजान उसको गुरु कहता है और अपने को उसका शिष्य बतलाता है। कुंवर कहा, अब सुनहु परेवा, मैं तोर शीश मोर तैं देवा, मैं तजी पंथ जाता बौराना, तैं गही बाह पंथ पर आना। चित्रावली पृष्ठ 68। डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे मध्ययुगीन प्रेमाख्यान इलाहाबाद पृष्ठ 172। यहाँ डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने नपुंसक परेवा को पक्षी समझ लिया है, पृष्ठ संख्या 353, जो ठीक नहीं। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी ने हिंदी सूफी काव्य की भूमिका में स्पष्ट रूपेण लिखा है, चित्रावली की माँ कुंवर के चित्र को धुलवा देती है, लेकिन इससे चित्रावली की व्याकुलता और बढ़ जाती है। चित्रावली को जब पता चलता है तब वह कुटीचर को दंड देती है, उसका सिर मुंडवाकर देश निकाला देती है। इसके बाद चार नपुंसकों को कुंवर की खोज में भेजती है। वे चारों चार दिशाओं में जाते हैं। उन चारों में परेवा नाम का दूत जोगी वेश में उत्तर दिशा की ओर जाता है। हरिद्वार, श्रीनगर, कुमायूं, बद्र केदार होता हुआ नेपाल पहुंचता है। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना 1960, पृष्ठ 244। अतः परेवा पक्षी नहीं है, अपितु चित्रावली के उन चार नपुंसक भृत्यों में से एक है जिन्हें चित्रावली ने कुमार की खोज में भेजा था। परेवा खंड की प्रारंभिक पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। कैसे व साज निपुंसक चारी, जिनसो अहिंसो चित्र चिन्हारी। बेगी चलाए चारी हो ओरा, ढूंढन चले सूर समी जोरा। उस्मान चित्रावली, काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, 1912 ईस्वी, परेवा खंड। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी में उपर्युक्त कथानक रूढ़ी को अपनाया है। इंद्रावती की कथा में राजकुमार और रतन जोत इंद्रावती के बीच संदेश वहन सुआ ही ने किया है। राजकुमार इंद्रावती को प्राप्त करने की अभिलाषा से उसके धौराहर के निकट स्नेह पादप के नीचे जा बैठता है। अकस्मात इंद्रावती अपने झरोखे में आती है और फिर एक बार राजकुमार को देखती है और दोनों के पारस्परिक दर्शन से प्रेम भाव और भी बढ़ जाता है। राजकुमार इसके अनंतर समुद्र से प्रण मोती निकालने के हेतु चल पड़ता है, किंतु मार्ग ही में दुर्जन राय उसे बंदी बना लेता है। वह बंदी गृह से इंद्रावती के यहाँ एक सुआ के द्वारा संदेश भेजता है और इंद्रावती उसका उत्तर फिर उसी सुआ के द्वारा पठाती है। पृष्ठ संख्या 354। सुआ समस्त संदेश सुनावा, इंद्रावती मन पावक लावा। नूर मोहम्मद इंद्रावती, पहला भाग, पृष्ठ 89। तात भई इंद्रावती छाती, रात ही लिखा कुवर कह पाती। वही पृष्ठ 89। रोवत आंसू रकत को इंद्रावती छविरास, पाती बांधी सुआ के भेजा प्रीतम पास। प्राण सुआ पाती ले आयेऊ, प्राण आहार स्नेही पायेऊ। रहसा ही प्रेम का चेरा, दर्शन पायेऊ पाती केरा। वही पृष्ठ 89। इसी प्रकार अनुराग बांसुरी में अंतःकरण एवं सर्व मंगला के मध्य संदेश वहन, प्रणय संस्थापन और परिणय ग्रंथि निबंधन आदि कार्य शुक ही ने किए हैं। स्नेह गुरु अंतःकरण को स्नेह मार्ग की कठिनाई को समझाने का प्रयत्न करता है, किंतु अंतःकरण को अपने संकल्प पर दृढ़ देखकर उसे प्रेम मार्ग में दीक्षित कर लेता है एवं स्नेह नगर के मार्ग प्रदर्शन के हेतु उपदेशी नामक एक तोते को उसके साथ कर देता है और स्वयं पूर्ववत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ जाता है। अंतःकरण दुखी माता पिता एवं पीड़ित पत्नी को विदा करके उपदेशी सुआ के पथ प्रदर्शन में स्नेह नगर की ओर अग्रसर हो जाता है। वह मार्ग में अनेक बसेरे करता है, अगणित कष्टों को झेलता है और अंत में स्नेह नगर पहुंच जाता है। स्नेह नगर में पहुंचकर अंतःकरण ध्यान देवहरा में बैठकर सर्व मंगला का ध्यान करने लगता है। उसके साधना के परिणाम स्वरूप सर्व मंगला दो स्वप्न देखती है। उपर्युक्त समय पर उपदेशी सुआ सर्व मंगला के हाथ पर बैठकर अंतःकरण की सारी प्रेम कथा क्या सुनाता है। अंतःकरण के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर सर्व मंगला को उसके दर्शन की उत्कंठा होती है और वह अपनी सखी चित्र बंधनी को उसका चित्र बनाकर लाने के लिए भेजती है। सुआ के कथनानुसार सर्व मंगला पुनः उसी के द्वारा अपना एक चित्र भी अंतःकरण के पास, पृष्ठ संख्या 355, भेजती है। इस प्रकार दोनों के पाणी ग्रहण करवाने का श्रेय उपदेशी सुआ को ही प्राप्त होता है। श्री चंद्रबली पांडे ने अनुराग बांसुरी की भूमिका में लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में सुआ से जो काम लिया है, वही अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद ने भी। अनुराग बांसुरी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, संवत 2077 विक्रम, भूमिका, पृष्ठ 61। परंतु पद्मावत के हीरामन और अनुराग बांसुरी के उपदेशी में अंतर यह है कि हीरामन नायिका का सुख है जो उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए प्रयत्नशील है। उपदेशी नायिका का सुख नहीं है, वह स्नेह गुरु का है जो अंतःकरण के दृढ़ प्रेम को देखकर उपदेशी को अंतःकरण के साथ कर देता है और अपने आप तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है। फारसी सूफी काव्य में भी पक्षियों को उपदेशक, विद्वान, पथ प्रदर्शक, संदेशवाहक, प्रेम संबंध संघटक आदि रूपों ने व्यवहृत किया गया है। सूफी प्रेम गाथाओं में पक्षी उपदेशकों की भांति काम की बातें बताते हैं, उपयोगी शिक्षाएं देते हैं और पुरुषों को सतपथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मौलाना रूम ने निम्न कथा में सुख को एक उपदेशक के रूप में चित्रित किया है। अरब के एक व्यापारी ने हिंदुस्तान का एक मनोहर मधुभाषी सुख पाल रखा था। तोता उससे मीठी मीठी बातें किया करता था। एक बार व्यापारी ने हिंदुस्तान जाने का निश्चय किया। जाते समय उसने सब भृत्यों से पूछा कि बताओ उस देश से तुम्हारे लिए क्या उपहार लाऊं। सब ने अपनी अपनी पसंद की वस्तुएं बताई। अंत में पिंजरबद्ध तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता जब तू वहां के शुकों को देखे तो मेरी दुर्वस्था का बखान मेरे सजातियों से कर देना। उन्हें कहना कि उनकी भेंट का इच्छुक एक बंधु यहाँ बंदी है। वह अभिवादन भेजता है और अपनी मुक्ति की युक्ति पूछता है। यह भी कहना, पृष्ठ संख्या 356, कि क्या यह न्याय है कि वह पिंजरे की कड़ियाँ सहन करे और आप स्वच्छंदता से आकाश में उड़ाने भरे। व्यापारी ने वचन दिया कि वह उसका संदेश उसकी जाति के शुकों तक पहुँचा देगा। जब वह हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचा तो वन में उसने शिकों के एक झुंड को देखा। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम और पैगाम दे दिया। संदेश सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर भूमि पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। व्यापारी इस करुणाजनक दृश्य को देखकर अत्यधिक व्यथित हुआ और जी में कहने लगा, शोक, मैंने असमय बात कहकर उस बेचारे के प्राण हर लिए। कुछ दिनों के पश्चात जब व्यापारी अपने देश लौटा तो तोते ने अपने संदेश के विषय में पूछा। व्यापारी अपना हाथ चबाने लगा और उंगलियां काटने लगा। सिर धुनते हुए उसने बताया कि पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेश सुनाया, उनमें से एक तोते का पित्ता उबलने लगा और उसका पित्ता फट गया। वह कपकपा कर भूमि पर गिर पड़ा और सिर मारकर सदा की नींद सो गया। व्यापारी के तोते ने जब यह माजरा सुना तो वह भी थरथर कांपने लगा और ठंडा हो गया। यह देखते ही व्यापारी ने अपनी टोपी भूमि पर पटक दी, शोक के मारे अपने वस्त्रों की धज्जियां उड़ा दी। बैन में कहने लगा कि हे सुंदर सुरीले प्रसन्न चित्त प्रिय शुक, यह तुझे क्या हो गया? हाय, मैंने यह कैसी भूल की! यदि मैं यह बात न कहता तो क्या हर्ज हो जाता? इंसान की जबान में नाश और निर्माण दोनों हैं। कभी वह निर्माण करती है और कभी उससे आग भी लगा देती है। जब व्यापारी रो पीट चुका तो तोते को पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तुरंत ही वह उड़कर एक ऊंची डाली पर जा बैठा। यह देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए और भौचक रह गया। उसने शुक से पूछा, हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या संकेत किया जिसे तू तो समझ गया परंतु मुझे उल्लू बना गया? तोते ने कहा, मेरी जाति वाले ने तोते ने मुझे यह शिक्षा दी थी कि तू, पृष्ठ संख्या 357, अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी मर्जी से जिंदगी के आराम और मजे भुला दे और अपने आप को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। हर की दाद उ हुस्ने खुदरा वर फिराद, सत कजाए बदसुए ऊ रुनिहाद। एक, अर्थात जिसने अपने हुस्न दो को जाहिर तीन किया, सौ बला को उसने अपने पर लिया। उसने इस प्रकार की कई उपयोगी शिक्षाएं दी और हिंदुस्तान की दिशा में उड़ गया। हुदहुद। फारसी कथा साहित्य की यह एक प्रमुख प्राचीन कथानक रूढ़ी है कि हुदहुद पक्षी 4 भारतीय कथा साहित्य के शुक के समान विद्वान, आलिम, पंडित, फाजिल, व्युत्पन्न, कुशल, प्रवीण, सर्वगुण संपन्न एवं सकल कला पारंगत है तथा मनुष्य की भाषा में अपने गहन तथा गंभीर विचारों को व्यक्त करने वाला है। वह भाषण पटु एवं तर्क वितर्क में बेजोड़ है। वह कुरान के किस्सों, भावों एवं विचारों का वेत्ता तथा भाष्यकार है। वह अनेकानेक कथा कहानियों का अपरिमित भंडार है। एक, मसनवी ए मौलवी ए मानवी, पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 1947, प्रथम भाग, पृष्ठ 158। दो, सौंदर्य। 3, प्रकट। 4, हुदहुद के कई उपनाम हैं। कीड़ों की खोज में घास और धूप खोजने के कारण इसे दुबया कहते हैं। सुंदर पोशाक तथा सर पर की कलंगी तुर्रा के कारण मुसलमान इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। बोलते समय यह 3 बार उक 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 सा कुछ कहता है जिसे विलायत के लोग हुप 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 समझते हैं। इस ध्वनि के कारण अंग्रेजी में इसका हुपू पड़ा, फारसी में हुदहुद। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, जुलाई 1958, पृष्ठ 141-42, पृष्ठ संख्या 358। और उन्हीं के द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वह पथ प्रदर्शक, संदेशवाहक, प्रेम संबंध घटक और परिणय ग्रंथि बंधक के रूप में अद्वितीय है। कुरान की कथा, कुरान सूरह नमल 27 में हजरत सुलेमान को सबा नगर की मलिका बिल्किस के विषय में सूचित करने का और उन दोनों के बीच पत्र वहन का कार्य हुदहुद द्वारा ही संपन्न होता है। कथा इस प्रकार है कि हजरत सुलेमान ने प्रत्येक पक्षी को एक एक सेवा पर नियुक्त कर रखा था। हुदहुद का यह कर्तव्य था कि सेना के लिए पानी की खोज लगाए। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में पानी विषयक हुदहुद एवं कौवे की एक रोचक कथा इस प्रकार दी है। जब हजरत सुलेमान की बादशाहत का डंका बजा तो सब पक्षी उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी चूं चूं को त्याग कर मनुष्यों की भांति उनसे बातें की। वे बारी बारी अपने उन गुणों को बखानने लगे जिनसे वे हजरत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। होते होते हुदहुद की बारी आई। हुदहुद ने कहा, जब मैं हवा में ऊंचा उड़ता हूँ तो पानी को, चाहे वह पाताल में भी हो, भली भांति देख सकता हूँ। यहाँ तक बता सकता हूँ कि यह कहाँ है, किस गहराई में है और इसका क्या वर्ण है। यह भी बता सकता हूँ कि वह पानी भूमि में से उबल रहा है या पत्थर से रिस रहा है। यदि आप अपनी सेना के साथ मुझे रहने की आज्ञा दे दीजिए तो मैं उपयोगी सिद्ध होऊंगा। हजरत ने उसकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकारी और कहा कि अच्छा, यह पक्षी बीहड़ वनों में हमारे साथ रहेगा, पथ प्रदर्शन करेगा और हमारे लिए पानी की खोज लगाता रहेगा। जब कौवे ने यह सुना तो जलकर कोयला हो गया और जली कटी सुनाने लगा, हुजूर, यह सफ़ेद झूठ है। यह हवा में उड़ने वाला शेख चिल्ली यूं ही हवा बांध रहा है। यह हवा सा पक्षी हवाई किले बना रहा है। यदि उसकी दृष्टि इतनी तेज है तो मुट्ठी भर मिट्टी में छिपा हुआ फंदा क्यों नहीं देख सकता, जाल में क्यों फंसता है और पिंजरे में क्यों बंदी बनता है। हजरत ने हुदहुद से पूछा, क्या यह सच है कि तूने झूठ से काम लिया है? हुदहुद ने कहा, ए बादशाह, खुदा के वास्ते बैरी लगाई बुझाई में न आइए। यदि इसमें तनिक भी झूठ हो तो जो चोर की सजा सो मेरी। रहा मृत्युवश होना अथवा ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बंदी होना, इसका समाधान असंभव है। यदि ईश्वर आज्ञा मेरी बुद्धि की ज्योति को न बुझाए तो मैं उड़ते उड़ते फंदे और जाल को देख लूँ, परंतु जब ईश्वर इच्छा साथ न दे तो बुद्धि मात खा जाती है। चूँ कजा आयद शवद दानिश बखाब मह स्याह गर्दद वगीरत आफताब। पृष्ठ 110। अर्थात जब मृत्यु आ जाती है तो बुद्धि सो जाती है, चांद स्याह हो जाता है और सूर्य गहन में आ जाता है। अंत में हुदहुद ने कहा कि मेरी बुद्धि में यह शक्ति नहीं कि ईश्वर आज्ञा का सामना कर सकूं। मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ प्रथम भाग पृष्ठ 108-110। एक दिन पृष्ठ संख्या 359 हजरत सुलेमान अपनी सेना सहित यमन प्रदेश की ओर जा रहे थे। वे अपने उड़ने वाले सिंहासन एक से नमाज के लिए उतरे। सब सैनिकों ने वहीं डेरे डाल दिए। हुदहुद अवसर पाकर यमन प्रदेश की सैर करता करता आगे निकल गया। एक अत्यधिक शाद्वल एवं हरे भरे नगर में पहुंचा जिसका नाम सबा था। वहां बिल्किस नाम की एक नारी राज्य करती थी। उसके अधीन 12 सेनापति थे और सेनापति की कमान में 100,000 सैनिक थे। मलिका और प्रजा सब सूर्य की पूजा पृष्ठ संख्या 360 करते थे। एक प्रसिद्ध उर्दू कवि चकबस्त ने स्वर्गीय लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के समय लिखा था, बन गई सरकार इंदर के अखाड़े की परी, ले उड़ी मोटर उन्हें तख्ते सुलेमा की तरह। अंतिम पंक्ति में इसी तख्त की ओर इशारा है। इधर हजरत सुलेमान को सेना के लिए पानी की तलाश थी। पूछा हुदहुद कहाँ है, परंतु उसका पता न पाया। अत्यंत क्रुद्ध हुए। इतने में हुदहुद भी आ पहुँचा। क्षमा याचना के पश्चात हुदहुद ने कहा, हजरत मैं एक अद्भुत समाचार लाया हूँ। मैं सबा नगर का हाल मालूम करके आया हूँ। मैंने वहाँ एक नारी को शासक के रूप में देखा है जिसे सुख समृद्धि के समस्त साधन उपलब्ध हैं और जिसके पास अपूर्व सिंहासन है। हुदहुद ने उन लोगों के सूर्योपासक होने का भी उल्लेख कर दिया। हजरत सुलेमान ने मलिका के नाम एक पत्र लिखकर हुदहुद को दिया कि बिल्किस के पास पहुंचा दे। हुदहुद ने उस पत्र को ले जाकर मलिका के सामने रख दिया। मलिका ने उसे उठाकर पढ़ा तो लिखा था, यह पत्र सुलेमान, जिन पर प्रभु का आग्रह हो, की ओर से है। दयालु और कृपालु ईश्वर के नाम से इस पत्र का प्रारंभ किया जाता है। तुम लोग विद्रोह न करो और मुसलमान होकर मेरे पास चले आओ। कुरान संवत 27-30-31 इत्यादि। अंततः हजरत सुलेमान का मलिका बिल्किस के साथ विवाह हो जाता है और इस प्रकार विवाह संबंध संगठक के रूप में हुदहुद का महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वप्रथम वह ही बिल्किस का परिचय देता है। ख्वाजा अत्तार मंती कुत्तैर में हुदहुद सर्वे सर्वा है। पुस्तक के प्रारंभ में उसकी प्रशंसा में अत्तार ने इस प्रकार लिखा है, मरहबा है हुदहुद हादी शुदा, दर हकीकत पैके हर वादी शुदा, ए बसर हदे सवा सैरे तो खुश, ब सुलेमा मंती कुत्तेरे खुश, साहिब असरारे सुलेमान आदमी, अस्तफाकुर ताज बरजा आमदी। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 36, पृष्ठ संख्या 361। अर्थात हे नेता सदुपदेशक हुदहुद, तू धन्य है, वस्तुतः तू सर्वत्र संदेशवाहक का काम करता है। ए हुदहुद पक्षी, तूने सबा तक यात्रा की है और तूने हजरत सुलेमान के पक्षियों की भाषा में भलीभांति बातचीत की है। तुझे सुलेमान का रहस्य मालूम है और इस गर्व के कारण तुझे ताज हुदहुद के सिर पर स्वाभाविक ताज होता है मिला है। ख्वाजा अत्तार का हुदहुद अत्यंत वाक्पटु है। वह सब पक्षियों को सीमुर्ग के दर्शनार्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। वह सर्वगुण संपन्न, प्रतिभावान, प्रगल्भ एवं तर्कशास्त्र में पारंगत है। अपने ठोस और अकाट्य तर्कों को अनेकानेक कथाओं द्वारा पुष्ट करके वह कठिन यात्रा से जी कतराने वाले बहानाबाज पक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देता है। प्रत्युत्पन्नमति हुदहुद के सामने उनकी एक नहीं चलती और वे निरुत्तर हो जाते हैं। आध्यात्मिक जगत के रहस्यों से पूर्ण रूपेण परिचित होने के कारण वे उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उसके नेतृत्व में यात्रा पर अग्रसर होते हैं। मर्मज्ञ हुदहुद पक्षियों के मार्ग में साधना विषयक अगणित गुप्त मर्मों को दृष्टांत रूप कुरान के किस्सों एवं अन्य अनेक कथा कहानियों को सुनाकर हृदयंगम कराता है। इस प्रकार हुदहुद सीमुर्ग के प्रति पावन परम प्रेम को उनके हृदय में पैदा करने में सफलीभूत होता है। अंत में वह 30 पक्षियों का सीमुर्ग से मिलन कराता है। अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सूफी कवि अत्तार ने हुदहुद की विद्वत्ता, परम प्रेम संबंध, घटक आदि के कार्यों के वर्णन में अपनी मौलिक सूझ तथा अद्वितीय कवित्व शक्ति का समष्टि परिचय दिया है। पक्षी भविष्यवक्ता के रूप में भारतीय कथा साहित्य में पक्षियों को भावी घटनाओं की सूचना देने वाले भविष्यवक्ता के रूप में भी अपनाया गया है। फारसी सूफी कवि मौलाना रूम की निम्न कथा मसनवी ए मौलवी ए मानवी तृतीय भाग आठवीं कथा में पक्षी के इस रूप का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हजरत मूसा से एक युवक ने जीव जंतुओं की भाषा सीखने की इच्छा की। उसको दृढ़ विश्वास था कि जीव जंतुओं की भाषा ही से दिव्य ज्ञान, पृष्ठ संख्या 362, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों की सारी जवानें तो खाने पीने और छल छंद ही के कामों में लगी रहती हैं। पहले तो हजरत मूसा न माने, परंतु युवक के बार बार कहने पर उन्होंने कुत्ते की बोली जो उसके द्वार पर रहता था और मुर्ग की बोली जो उसके घर में पला था सिखा दी। प्रातः काल करेवा करते समय एक रोटी का टुकड़ा जो खाने से बच गया था नीचे भूमि पर गिर गया। मुर्गा तो ताक में था ही, देखते देखते ही उसे उड़ा ले गया। कुत्ते ने गिला किया कि तू तो दाना दूंका भी चुक सकता है, यह छोटा सा रोटी का टुकड़ा जो वास्तविक में मेरा भाग था उसे भी चट कर गया। मुर्गे ने कहा कि कल हमारे स्वामी का घोड़ा मर जाएगा तो उसे पेट भर कर खाना। यह सुनते ही युवक ने घोड़ा बेच दिया। अगले दिन प्रातः राश के समय मुर्गे ने फिर कुत्ते का भाग हड़प कर लिया। कुत्ते ने पुनः गिला किया कि हे बकवादी मुर्ग, तू कैसा झूठा है। अरे ठग, तूने कहा था कि घोड़ा मर जाएगा, घोड़ा कहाँ मरा, तूने मुझे झोल दिया। मुर्गे ने उत्तर दिया कि घोड़ा मर तो गया परंतु किसी दूसरे के यहाँ। इस बार हमारा स्वामी घोड़ा बेचकर हानि से बच गया, परंतु कल उसका ऊंट दम छोड़ देगा, फिर मुंह भर कर खा लेना। यह सुनकर स्वामी ने भट से ऊंट को भी बेच दिया और उसके मरने के शोक एवं हानि से भी छुट्टी पा गया। तीसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग को लबार कहते हुए उसको डांट बताई। मुर्ग ने कहा कि चिंता न कर, कल उसका दास दम तोड़ जाएगा और उसके नाती रोटियां बांटेंगे, तुम्हें भी पेट पालने का सुंदर अवसर मिलेगा। यह सुनते ही स्वामी ने दास को बेच दिया और घाटे से बचकर खुशी से फूला न समाया। चौथे दिन निपट निराश कुत्ते ने मुर्ग की भविष्यवाणियों की खिल्ली उड़ाई और उसे परले दर्जे का कपटी एवं वाचाल बताया। मुर्गे ने कहा, अच्छा देखना हमारा स्वामी अवश्य ही प्राणों से हाथ धोएगा, वह अपने आप को इससे बचा न सकेगा। कल रोटियां और अन्य वस्तुएं खा खा कर पेट की आग बुझाना। यह सुनते ही युवक स्वामी के हाथों के तोते उड़ गए। वह सिर धुनता हुआ हजरत मूसा के पास पहुंचा, परंतु पृष्ठ संख्या 363, हजरत मूसा उसके प्राण बचाने की बात टाल गए, परंतु इतना कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तू ईमानदार मरे। अगले दिन स्वामी अल्लाह को प्यारा हो गया। हजरत मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की तो दिव्य वाणी हुई, गुफ्त बख्शीदम बाऊ इमानयम मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ तृतीय भाग पृष्ठ 233। अर्थात हे महापुरुष, मैंने इसका ईमान बख्श दिया। पंछी दूत। कथा साहित्य की एक रूढ़ी है कि पक्षी आदि आपत्ति काल में या वियोग काल में नायक नायिका आदि के संवाद वहन का कार्य करते हैं। यथा कालिदास के मेघदूत में यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजा है। पद्मावत में नागमती संदेश खंड के पंछी दूत की योजना इसी भारतीय कथा साहित्य की रूढ़िबद्ध शैली पर हुई है। चित्तौड़ में नागमती को राजा रत्नसेन की बाट जोहते हुए एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। वह उसकी वियोगाग्नि में संतप्त होकर जीवन की आशा त्याग देती है, क्योंकि रत्नसेन की लौट आने की न तो कोई आशा है और न उसके पास संदेश पहुंचाने का कोई उपाय। भला सात सागर पार करके कौन विरहणी के दुख भरे संदेश को उसके प्रियतम के पास पहुंचाए? उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो जाते हैं। अंत में आधी रात को एक पक्षी नागमती से दुख का कारण पूछता है। फिरी फिरी रो व कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तू फिरी फिरी दाहें सब पाखी, के ही दुख रहनी न लावसी आखी। जायसी ग्रंथावली पद्मावत नागमती संदेश खंड पृष्ठ 159। वह पक्षी नागमती का संदेश लेकर सिंघल दीप जाता है और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठता है। संयोग से रत्नसेन शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। पक्षी पेड़ पर से नागमती की दुख गाथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन करता है। पृष्ठ संख्या 364। इंद्रावती में भी उपर्युक्त कथानक रूढ़ी के दर्शन होते हैं। जब राजकुमार को दुर्जन राय बंदी बना लेता है तो राजकुमार तोते के द्वारा इंद्रावती के पास अपने बंदी होने का समाचार भेजता है। नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग सुआ खंड पृष्ठ 85-87। शेख रहीम कृत भाषा प्रेमरस में नायिका चंद्रकला का पिता नायक प्रेमसेन के पिता बुद्धसेन के घर को लुटवा कर उसे बंदी बना लेता है। बुद्धसेन की स्त्री अत्यंत व्यथित होकर घर बार छोड़कर वन में अपने पुत्र के वियोग में मारी मारी फिरने लगती है। उसका पुत्र प्रेमसेन संसार को मिथ्या समझकर घर से बहुत पहले निकल जाता है और वन में सहपाल नामक गुरु का शिष्य बनकर साधना में प्रवृत्त हो जाता है। प्रेमसेन की माता की दुर्दशा और वन में फूट फूट कर रोने की सूचना एक पक्षी द्वारा गुरु सहपाल को मिलती है। इस पर प्रेमसेन अपनी माता को खोजने के लिए चल पड़ता है। फारसी साहित्य का हुदहुद भी हिंदी सूफी कवि अली मुराद कृत कथा कुवरावत में नायक कुंवर की पूर्व पत्नी को वियोग विधुरा अवस्था की सूचना कुंवर को देता है। यह संदेश भी उपर्युक्त कथानक रूढ़ी के आधार ही पर हुआ है। वासुमती वासुदेव की पुत्री एवं कुंवर की पूर्व पत्नी थी। कुंवर के बिछोह में वह वन वन रोती घूमती थी। एक हुदहुद ने उसकी कथा सुनकर कुंवर तक उसका संदेश पहुंचाने का उत्तरदायित्व लिया। हुदहुद के द्वारा वासुमती का करुण क्रंदन सुनकर कुंवर फूलमती के साथ स्वदेश की ओर चल दिया। डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के पूर्ववर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ संवत 2023 विक्रम पृष्ठ 584। वायुदूत। फारसी साहित्य में कवियों ने वायु को पक्षी की भांति दूत के रूप में प्रायः व्यवहित किया है। सूफी कवि हाफिज का शेर देखिए, पृष्ठ संख्या 365। ए हुदहुदे सबा ब सबा भी फिरिस्त मत, बिनगर की अस्कुजा बकुजा में फिरिस्त मत। दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 40। अर्थात हे ए हुदहुद पक्षी, सिबादे सबा प्रभात समीर सूर्योदयोपरांत पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली सवेरे की ठंडी और हल्की वायु, मैं तुझे सबा मलिक बिल्किस का नगर देश की ओर भेजता हूँ। देख कि कहाँ से कहाँ मैं तुझको भेजता हूँ। इस प्रकार इस वांग्मय में हवा बादे सबा आपत्ति की घड़ियों में या वियोगावस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पात्र से दूसरे पात्र तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। फारसी साहित्य में इस रूढ़ी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ खाजू किरमानी के शेर देखिए, अया सबा खबरे कुन मरा अजा की तू दानी, बदा जमी गुजरे कुन दरा जमा की तू दानी। चुमुर्ग दर तैरा आ ओ चू दर ओज निशस्ती, नजूल साज दरा खुर्रम आशिया की तू दानी। चुना मरो की गुबारे बदू रसत जे गुजारत, बदा तरफ चू रसीदी बरो चुना की तू दानी। हमा जमा की रसीदी बदा जमी की तू दीदी, सलामो बंदगी ए माँ बदा रसा की तू दानी। चू जुजे तू हेच कस आजा मजाले कुर्ब नदारद, बरो बमंजिले आ माहे दिलस्ता की तू दानी। हिकायते शबे हिजरा ओहाले रोजे जुदाई, जमी बबोसो बिया कुन बदा जबा की तू दानी। बनो के खामाए मजगा तहयते की नविष्टम, बदू रसा ओ बगोशश उगो आ चुना की तू दानी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आईना ए दानिश, लाहौर, सन 1946, पृष्ठ 175-176, पृष्ठ संख्या 366। अर्थात हे प्रभातकालीन समीर, तू जो कुछ जानती है मुझसे उसका उल्लेख कर। तू उस स्थान में से गुजरती जा ऐसे समय में जिसे तू उपयुक्त समझती है। पक्षी एक की भांति उड़ान लगा और जब तू ऊंचाई पर पहुंच जाए तो तू उस प्रत्यक्ष आलात के स्तर प्रिय के घर में उतर जा जिसे तू भली भांति जानती है। इस तरह से न जाइयो कि तेरे गुजरने से उस पर कोई धूल उड़कर पड़े, और जब तू उस स्थान पर पहुंच चुके तो इस प्रकार से उसके पास जा जिस प्रकार से तू उचित समझती है। ज्यों ही तू उस भूमि पर पहुंच जाए जिसे तूने पहले ही से देखा हुआ है, हमारी शुभकामनाएं उस तक पहुंचा दे जिसे कि तू जानती है। जबकि तेरे अतिरिक्त किसी अन्य को प्रिय के पास जाने का साहस नहीं, तू ही उस शशि वदन के घर में जा जो कि तुझको मालूम है। भूमि को चूमकर वियोग की रात्रि की गाथा और विरह के दिन की अवस्था उस भाषा में वर्णन कर जिसे तू स्वयं जानती है। जिस पत्र को मैंने पलकों की लेखनी की नोक से लिखा है उस तक पहुंचा दे और उसके कान में इस प्रकार कह दे जिस प्रकार की तू जानती है। ख्वाजा हाफिज ने एक गजल इसी जमीन में कही है, उसके कुछ शेर दृष्टव्य हैं। नसीमे सुबह सआदत बदा निशा की तू दानी, खबर बकुए फला बर बदा जमा की तू दानी। तू पैके हजरत शाही मरा दो दीदा बरास्त, बमरदमी न बफरमा चुना रसा की तू दानी। बगो की जाने ज़ईफ़म ज़े दस्त रफ्त खुदारा, ज़े लाले रूह फ़ज़ायत बबख्श जा की तू दानी। मनीदा दो हर्फ नविष्टम चुना की गैर नदानिस्त, तू हमज़े रूए करामत चुना बखा की तू दानी। दो इत्यादि। एक कवि समीर को पक्षी की भांति समझता है। दो दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 443। अर्थात हे प्रातःकालीन कल्याणकर शीतल मंद समीर, उस पते पर जो पृष्ठ संख्या 367 तुझे ज्ञात है, अमुक प्रिय की गली में अनुकूल समय पर समाचार ले जा। तू मेरे बादशाह प्रिय का राजकीय संदेश वाहक है, मेरी दोनों आंखें राह में बिछी हैं। मैं तुझे आज्ञा नहीं देता अपितु सौजन्य का वास्ता देकर कहता हूँ कि तू इस तरह संदेश पहुँचा जिस तरह तू उचित जानता है। तू प्रिय को कह कि मेरी निर्बल जान मेरे वश में नहीं रही, खुदा के वास्ते रूह वर्धक पद्मराग ऐसे होठों से मेरे भीतर रूह फूंक दे। हे प्रिय, मैंने ये दो शब्द इस प्रकार लिखे हैं कि अन्य कोई उनको न समझ सके। तू भी अपनी महत्ता से इस प्रकार मुझे अपने पास बुला जिस प्रकार तू उपयुक्त समझता है। वायु को संदेशवाहक अथवा पत्रवाहक के रूप में अपनाने की रूढ़ी फारसी साहित्य से हिंदी एवं उर्दू साहित्य में गृहित हुई है। इंद्रावती में जब वाटिका में राजकुंवर इंद्रावती के वदन पर एक लठ को देखकर मूर्छित हो जाता है तो वह जीव कहानी नामक एक कथा रूपक को लिखकर उसके पास छोड़ जाती है। इंद्रावती चेता मालिन के द्वारा एक पत्र भेजती है, फिर वायु को संदेशवाहक के रूप में इस प्रकार वर्णित किया गया है। जब प्रभात भयो उजियारा, फुलवारी मो बहु बयारा, पाई बयार कली रहसानी, बहुत हंसी बहुत है मुस्कानी, राजा कहा पवन के साथा, है मेरो मन जा घन हाथा, जो तेही ओर बहो तुम आई, दीन्हे मोर संदेश सुनाई, सुघरी मिली दया की पाती, मैं मुद मैं हृदय और छाती, पड़ी राखेऊ मन ऊपर, डरेऊ की मान सदा ही, पाती कहन झरावे, धरेऊ नयन पर ताही, कुंवर संदेश पवन जो पावा, इंद्रावती जो सो जाई सुनावा। नूर मोहम्मद इंद्रावती पाती खंड पृष्ठ 77-78। इसी प्रकार इंद्रावती उत्तरार्ध में पद्मावत की नागमती की भांति राजकुंवर की विरहग्रस्त पूर्व रानी सुंदर राजकुंवर को अपना हृदय द्रावक पृष्ठ संख्या 368 संदेश भेजती है। नागमती तो पक्षी के द्वारा संदेश प्रेषित करती है, परंतु यह पवन के द्वारा। उसे जानकर राजकुंवर इंद्रावती के साथ रत्नसेन के समान स्वदेश की ओर प्रस्थान करता है।